ऐसा कहेंगे। जीव प्रदेश और कर्मों का एक मेक हो जाना दूध और पानी की तरह, उसको कहेंगे बंध। आश्रय की क्या परिभाषा बनी? कर्मों के आत्मा में आने का नाम आश्रय, और कर्मों का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना बंध हो गया। ऐसी परिभाषा सीधी सीधी है। अब जिन वजहों से कर्म आते हैं उनको रोक देना, इसका नाम क्या है? संवर। आश्रयों के कारणों को रोक देना, उस तो काहे से रुकेंगे? तो कैसे? व्रत से रुकेंगे, संयम से रुकेंगे, क्योंकि अविरति है और असंयम है, इसकी वजह से कर्म आते हैं। हम पहले समझ चुके हैं कषाय है हमारी, तो इन सबको हम रोक देंगे तो कर्म आना। तो वही लिखा शम दम दें। शम का मतलब होता है यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, एक मिनट नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, शम मतलब प्रशम भाव, जिसको अपन कहते हैं कषाय की मंदता, उसको बोलेंगे शम है। और दम मतलब है इंद्रिय और मन को वश में करना। ये हो गया तप। तो संयम और तप, सीधी सीधी बात। अपन दूसरी अपनी चलने वाली भाषा क्या है? संयम और तपस्या के द्वारा हम कर्मों का आना रोक सकते हैं। यहाँ पर दिया है शम और दम, तो शम के मायने क्या है? कषायों का शांत होना। और दम के मायने क्या है? इंद्रिय और मन का अपने वश में कर लेना। ये शम और दम, इनके द्वारा संवर होता है। दोनों बताते जा रहे हैं ये कि कर्मों के रुकने का ना आना रुक जाए तो वो संवर है। काहे से रुकता है? तो कहते संयम और तप के द्वारा रुकता है, या शम और दम के द्वारा रुकता है। अब फिर आना तो रुक गया, पर जो कर्म बंधे हुए थे उनका पार्शियल डिसइंटीग्रेशन है, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन। अब उनको जो है ग्रेजुअली एक 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 कर्म को अलग करना है, तो उसका नाम निद्रा कहलाएगी। पार्शियल है, पार्शियल भी कह सकते हैं, ग्रेजुअल भी कह सकते हैं। ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, ग्रेजुअल डिके या पार्शियल डिके, वो कैसे होगा? तो कहते हैं तप बलते हैं, तप के माध्यम से। तप के माध्यम से संवर भी होता है, तप के माध्यम से निद्रा भी होती है, दोनों चीजें हैं। और तप के मायने क्या होता? इच्छा निरोधा तपा, सबसे सरल सरल परिभाषा है। अपनी इच्छाओं को जितना कमती कर लेंगे उतने ही हम तपस्वी माने जाएंगे। आप आज दिन भर में आप चाहें तो एक इच्छा कम कर दीजिए, आपकी तपस्या हो गई। तप का मतलब अपन को ऐसा लगता है कि वो वैसे बैठ बाट करके जो है और ध्यान व्यान करना बहुत तपस्वी है, ऐसा नहीं, वो नहीं है। हमने अपनी इच्छा को कम कर दिया, वही हमारा तप हो गया। उससे हमें जो कर्म आ रहे थे वो रुक जाएंगे और जो पुराने बंधे हैं वो निकल जाएंगे। अभी मैं कल एक चीज बताना भूल गया था, कल के प्रवचन में मैं एक विचार और था उसमें कि जो कहा था ना कि भावनाओं का अगर उस पर मोहर लग गई है तो उसका फल अनंत गुना हो जाता। कहते हैं कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं अगर बुरी भावना से कर रहे हैं तो उनका फल बुरा फल अनंत गुना मिलेगा, लेकिन उनका जो शुभ फल है वो जीरो हो जाएगा। देखो, बुरी भावना से किए गए कार्य का फल अनंत गुना, बुरा फल अनंत गुना और अच्छा फल जीरो। और अच्छी भावना से उसी कर्म को करें जिसको आपने बुरी भावना से करा था, उसी कर्म को अच्छी भावना से करें तो उसका फल अच्छा फल अनंत गुना, बुरा फल जीरो। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जैसे ही हम तपस्या करते हैं तो जो हमारे साथ बुरे कर्म बंधे हुए हैं उनकी तो होती निर्जरा, और जो बुरे कर्म आने वाले थे उनका हो गया संवर। दोनों काम, संवर भी हो गया, नए कर्म नहीं आए, और जो पुराने बुरे थे वो भी जीरो होना शुरू हो गए, उनका भी डिसइंटीग्रेशन डीके होना शुरू हो गया। तो दोनों चीजें, संवर भी होता और निर्जरा भी होती तप के द्वारा। ताही सदा आचरिए, उसी का आचरण हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम निर्जरा करना चाहते हैं। और मोक्ष क्या है? सकल कर्म ते रहत अवस्था सोस्यु, फिर सुखकारी। कितने बढ़िया से विशेषण भी दे देते हैं, हमें उसका परिचय भी करवा देते हैं, दोनों चीजें हैं। सब कर्मों से जो रहत अवस्था है, मोक्ष नाम की कोई जगह नहीं है जहां हम पहुंच जाएंगे तो सब सुख मिल जाएगा, नहीं। मोक्ष का मतलब है समस्त कर्मों से रहत हमारी एक स्टेज है, जो हमारी वर्तमान की स्टेज है, ऐसे एक स्टेज है जिसमें हम कर्मों से रहत होते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। और शिव मतलब मोक्ष, शिव का मतलब समझना मोक्ष। और जो कैसी है? स्थिर है, एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर बाद में जाती नहीं, स्थिर और सुखकारी, हमेशा सुख देने वाली है। ई विधि सो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, अगर हमने जो इन सात तत्वों का स्वरूप पढ़ लिया है और हम ऐसा ही इनका स्वरूप पर विश्वास कर लेते हैं, इस पर हम श्रद्धा कर लेते हैं कि सही बात है, सच्ची बात तो यही है कि मेरा अपना स्वभाव जो है चेतना रूप है और इससे विपरीत जो तत्व हैं वे सब अचेतन हैं। अचेतन भी पांच प्रकार के हैं, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं। इनके अपने अपने स्वभाव हैं। यही तो कहा था कि पुद्गल, नवधर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। समझ में आ गया, वहां पर मैं गलती करता था, इन सबको एक में एक मान लेता था। अब समझ में आया कि मेरी चेतना स्वरूप अलग है और ये तो अचेतन है और ये पांचों भी अलग है और मुझे इन अचेतन कर्मों के द्वारा ही बंधना पड़ता है। क्यों बंधना पड़ता है? क्योंकि मैं मन वचन काय की क्रिया करता हूँ और साथ में मेरे कोई ना कोई कषाय होती है, मिथ्यात होता है या मेरा प्रमाद होता है, अविरति होती, इनकी वजह से मेरे निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। जब नहीं, कर्मों का आश्रय होता रहता है और जब ये आश्रय होता है तो जो कर्म आते हैं वे आकर के मेरी आत्मा के साथ हमेशा के लिए संबद्ध हो जाते हैं, ये एक निश्चित समय के लिए बंध जाते हैं। तो इसी का नाम तो बंध है। ये सहज सी प्रक्रिया है। और जब मैं अपने मन वचन काय को रोक लेता हूँ और क्या कहें उसको, अपनी कषायों को कम करता हूँ तो मेरे कर्म आना कम हो जाते हैं या कि बंद हो जाता, उसी का नाम तो संवर है। और जब मैं तपस्या करना, अपनी इच्छाओं को रोक लेता हूँ तो तपस्या के द्वारा धीरे धीरे कर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। एक स्थिति बनती जब सारे कर्म निकल जाएंगे, वही तो मेरी मोक्ष अवस्था है। बात समझ में आई? ऐसा अपने आप भीतर से फील होना चाहिए कि यही तो प्रोसीजर है, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं खुद ही करता हूँ और खुद ही उसका फल भोगता हूँ। जब मैं ये करना छोड़ दूँ तो सारा कुछ जो है शांत हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जल्दी से विश्वास हो गया, प्रोसीजर पूरा यही है। तो कहते यही विधि सो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार जो श्रद्धा कर लेता है, जिसको ये बात जचने लगती। एक चीज और आपसे कहूं, मान लो इनका स्वरूप भूल भी जाओ, मेरा इंटेंशन छेड़ाला को पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि आपको रटंत विद्या के द्वारा आप, मैं जो पूछूं और उसको फट से बता दें तो आपको मान लूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया आपने सीख लिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मान के चलिए। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि जब कभी आप बैठें खाली और आपको लगे कि हाँ ठीक तो है, मैं ही मन वचन काय की क्रिया करता हूँ, कषाय करता हूँ, ये सब अचेतन है, मैं तो चेतन हूँ और मैं जब ऐसी क्रिया करता हूँ तो मेरे कर्म आते हैं, फिर मेरे से बनते चले जाते हैं, जब मैं ये क्रिया बंद कर दूंगा तो ये सब कर्म आना बंद हो जाएंगे और पुराने वाले कर्म खत्म हो जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, वही तो मेरी मोक्ष अवस्था है। अब समझ में आ गया, इतना इजी, ये भीतर में है, ये सब अपन ने आचरण में ला लिए। एक व्यक्ति का आपको उदाहरण बताऊं, अब ये मैंने बहुत प्रैक्टिकेबल कैसे हैं ये सारी चीजें, ये तो समझ नहीं अपन ने और रट भी लेंगे, कई लोग जो है बिल्कुल ज्यों कहते हैं बता देंगे, अकेले ज्यों कहते हैं बताने का नाम पढ़ना नहीं है उसको। जीवन में एक व्यक्ति था साड़ू मन में, बिल्कुल फैक्ट है ये घटना, वो पंडित जी साहब सुनाते हैं वहां के हीरालाल जी के महाराज, हमारे पास वो व्यक्ति कर्म सिद्धांत पढ़ता था कि कैसे कर्म आते हैं, कैसे बन जाते हैं, क्या स्थिति बनती, क्या उनका अनुभाग पड़ता है, कितने आते हैं, किस किस नेचर के होते हैं, सब क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उनकी पोटेंशियलिटी क्या है, सब खूब अच्छे से पढ़ता था। एक बार जो है वो पकड़ा गया चोरी में। हाँ, तो हमको विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा भाई क्या चोरा, पंचायत बैठी, पहले ऐसा नहीं होता था, कोर्ट वोर्ट, पंचायत बैठी कि भैया तुमने चुराया, क्या चुराया, तो लोगों ने कहा कि इनने भूसा का बोरा चुराया, देखो भूसा उसका बोरा चुराया, वो पकड़े गए, पहली पहली बार तो चुराया उसने। अब उसको ये समझ में नहीं आई कि भूसा का बोरा कंधे पे लेकर के जाएंगे दूसरे के घर से उठा के, तो उसकी लाइन तो गिर गई पूरी घर तक, तो वो गिरती गई लाइन भूसा की, तो पकड़ा गया, वो दूसरे दिन पकड़ा गया और टिको, तो कोई ने जाके पूछी क्या भैया जो हमारा भूसा का बोरा, कहले हाउ या भी झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, कहना तुम्हारी दो आए और पकड़े गया। अब जब पेशी हुई तो उससे कहा कि भैया और तो सब ठीक है, मालूम पड़ गया तुमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन ये बताओ तुमने चुराया क्यों और ये क्यों चुराया? सोने की सामग्री उतनी बाजू में रखी थी, ऐसे पैसा पड़े थे, रुपया पड़े थे, तुम इतना बड़ा भूसा का बोरा लेके गए? कहले मालिक ध्यान है को लड़का बच्चे के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, 3.5 रुपया जाने थे, अब वो उतने पैसों में से हम नहीं गिन के जानत के 3.5 के देखो थे, हम जा जानत के 3.5 को बोरा बिखे, तो हम उतना ही ले गए थे। पंडित जी से हमने पढ़ी है कि जैसे परिणाम करो वैसे ही कर्म बंधा है, हमें ज्यादा बड़े कर्म नहीं बांधने, हमारी इतनी जरूरत थी तो हमने। अब देखो आप, पंडित जी से पढ़ी थी कि ज्यादा करें ज्यादा इंडल्जिंग होगी तो ज्यादा बनने की हमारी कोई ऐसी आशक्ति नहीं थी। 3.5 रुपये जाने, तो हमने की अब जी पैसों में से ले जाए तो क्या पता ज्यादा कम कितने हो जाए, कितने को बिके, जो मालूम होती कि 3.5 को बिके, जो 3.5 काम ले गए थे। अब प्रैक्टिकल देखिए उसका, वो कर्म बंध आश्रय और बंध तत्व को जान करके जो आश्रय और बंध से विमुख होता है सच्चा बढ़ने वाला, तो वो है। और जो संवर और निर्जरा को जान करके निरंतर कहता है कि इसको कैसे कर्म कर लूं, अभी तो कोई जरूरत नहीं मन वचन काय की क्रिया करने की, तो शांत बैठो ना, जितना शांत बैठूंगा उतना ही संवर होगा, उतना ही निर्जरा होगी, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों दूसरा खाली है तो अपन कई चीजें उपद्रव शुरू कर देते हैं, और दूसरे कि अब खाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो यहाँ का वहां, वहां का वहां कुछ का कुछ करना शुरू कर देंगे, एंगेज करना अपने आप को। लेकिन अपने आप को एंगेज करेंगे तो मन वचन काय की क्रिया तो होगी, शांत बैठे रहेंगे तो संवर और निर्जरा होने वाला। ये अगर हमें आ जाता है प्रैक्टिकल, तो सातों तत्वों का स्वरूप अगर नहीं भी आए तब भी हमारा काम हो जाए। और जो सब स्वरूप समझता है और आश्रयबंद करता रहता है वो तो उसके लिए तो धर्म सिर्फ किताबी है। सो समकित व्यवहारी, इसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि हो गया, और व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है। एक दिन हम अपनी आत्मा की रुचि, जब मैं तो सोचता हूं कि आत्मा की रुचि हुई होगी जिसको, वो ये सब करेगा, और जो ये सब कर रहा है एक दिन अगर उसको समझ आ गई कि मुझे ये सब इसलिए करना है, क्योंकि दो तरह से कर सकता व्यक्ति, मन वचन काय की क्रियाओं को अपने स्वार्थवश भी रोक लेता है। बगला का उदाहरण अपने यहां बहुत आता है, बगला जो है उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो मछली पकड़ने के लिए एकाग्रचित होता है, तो मन वचन काय की क्रिया रोकने से अकेले काम नहीं है, उसके पीछे हमारी दृष्टि क्या है, आत्मरुचि। अगर ये दोनों एक साथ हो गई कि एक तरफ मन वचन काय रोकने की क्रिया और दूसरी तरफ आत्मा की रुचि, हो गया निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, दोनों एक साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भीतर में जो हमारे परिणामों की निर्मलता है और बाहर में जो हमारी प्रैक्टिस है, बस यही व्यवहार और निश्चय है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो तो व्यवहार है, और इसके माध्यम से जो मैं अपने आत्मा में रुचि लूंगा वो निश्चय है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अब ये सात तत्वों के श्रद्धान को तो सम्यक दर्शन कह रहे हैं, लेकिन और भी बता रहे हैं कि अकेले सात दर्शन, सात तत्वों का श्रद्धान किससे होगा। आत्मा में रुचि तो सात तत्वों की श्रद्धान से होगी, और सात तत्वों का श्रद्धान किससे होगा, कारण का कारण क्या है। कहते जब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में नहीं बैठोगे तब तक सात तत्वों की तो अकल नहीं आने वाली आपको, ना उनका श्रद्धान होने वाला। तो देखो कैसे क्रम से बता रहे, पहले बताया आत्मरुचि, फिर वो आत्मरुचि कैसे होगी, तो कहते सात तत्वों की श्रद्धा करो। अब सात तत्वों की श्रद्धा कैसे होगी, कहते पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा करो, तो सात तत्वों पर श्रद्धा होगी, सात तत्व पर श्रद्धा होगी तो आत्मा में श्रद्धा होगी, फिर उसमें रुचि होगी। वही बताते कि देव जिनेन्द्र, अगर हमारे देव हैं तो जिनेन्द्र भगवान है। जिनेन्द्र किसे कहते हैं, वीतराग हितोपदेशी और सर्वज्ञ, वे ही जिनेन्द्र हैं, ऐसा कहिएगा। यहां जिनेन्द्र से मतलब तीर्थंकर से है विशेष रूप से। और दूसरी परिभाषा भी है कि, अच्छा दूसरी परिभाषा भी है, 4:45 हो गया है, क्यों भाई 4:30 नहीं तब ठीक। तो जिन्होंने अपने इंद्री और मन को जीत लिया है उसे जिनेन्द्र कहते हैं, या सीधा सीधा भी जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली, या जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं। और कर्मों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली वही तो अरहंत हैं, वही तो सिद्ध हैं, उन्हीं को अपन तीर्थंकर भी कहो तो कहो। तो एक ही परिभाषा हो गई सामान्य की, वीतराग हितोपदेशी और सर्वज्ञ, वे ही हमारे सच्चे देव हैं, उन पर श्रद्धा करना। और गुरु परिग्रह बिन, तीन शब्दों में हो गया, बल्कि परिभाषा दो ही शब्दों में, परिग्रह बिन गुरु। अपन कहते हैं ना विषयों की आशा नहीं जिनके, बस इतने में हो गया, विषयों की आशा नहीं जिनके। साम्य भाव तो बाद में आएगा, कभी कभी साम्य भाव नहीं भी रह पाएगा, लेकिन विषयों की आशा नहीं है। हाँ नहीं संभव है, कभी कभी नहीं भी रहेगा साम्य भाव। अब साम्य भाव कई बार नहीं रहता है, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर नहीं बैठेंगे वहां बैठेंगे, ये क्या है, ये भी तो साम्य भाव नहीं है आपका, दे रहे थे नहीं ले, जो दे रहे हैं वो ले, जैसा दे रहे हैं वैसा ले, आपका साम्य भाव नहीं है। अगर देखा जाए तो समता मतलब यथा लब्ध है, एक्चुअली प्रक्रिया है यथा लब्ध। शुरू शुरू में आचार्य जी ने करा, लेकिन और भी महाराज जी लोगों ने करा, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होती। यथा लब्ध मतलब पानी देते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, आप ही अपने आप के बस 3-4 अंजलि दे दिया, आप दूसरी चीज दो, एक बस मना नहीं करेंगे, उसमें बीमार पड़ गए थे क्योंकि अब उनने दूध देना शुरू किया, देते चले गए। जब उनको अब आचर्षी को देते चले जा रहे हैं दूध, तो उनको जितनी गुंजाइश थी, हिम्मत थी, उतना तो उन्होंने लिया। उसके बाद बैठ गए कि अब कुछ दे ही नहीं रहे, तो खत्म, चलो। यथा लब्ध के मायने ये होता कि जो देते चले जा रहे हैं, आपने चेंज नहीं किया तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो आप दूसरी चीज करेंगे। बस खुली है, आप देते चले जाओ, फिर आप और जब तक लेना ले लिया, फिर उसके बाद तो समता। तो इसलिए नहीं, अगर आपने ऐसी कर ली वो तो आप समझदार हो तो समझ जाओ, पर जिसके समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसने इनने इसलिए बहुत बड़ा लक्षण न लिख के थोड़ा सा लिख दिया कि परिग्रह बिन, परिग्रह से रहते हैं। जब धर्म सागर जी महाराज के पास किसी मुनि महाराज की शिकायत लेके एक व्यक्ति पहुंचे कि महाराज तो ऐसा ऐसा करते हैं, क्या करना चाहिए महाराज को ऐसा, तो धर्म सागर जी ने अरे दिया भैया बहुत प्रेम से उसको, बहुत खुश हुआ कि चलो पूछेंगे क्या क्या करते हैं। कहने कहा भाई कपड़ा तो नहीं, नहीं कपड़े महाराज कहाँ कपड़ा पड़ गए, वो भी कपड़ा गया एक बार, उसने तो बहुत गलती गिनाई थी। उनने बड़े धीरे से कान में से जैसे पूछा, वस्त्र तो नहीं पहने, नहीं और कुछ सामान वामान तो नहीं, कुछ नहीं, दो बार तो नहीं खाते, नहीं ये कई बार खाते हैं, तो उठो करें यहाँ से, हो गया फिर हमें बाकी नहीं सुनना। हमारा बाह्य रक्षण इतने ही से पूरा हो गया, अब अंतरंग की परिणामों को क्या कह सकते हैं, किसके कैसे परिणाम। तो परिग्रह से रहते हैं, इतना ही हमारा गुरु का लक्षण है, जो निष्परिग्रही है। देखो परिग्रह रख के भी कई लोग समता भाव रख सकते हैं, इसलिए समता भाव अकेला लक्षण नहीं, वो तो अंतरंग परिणाम है। वाही में परिग्रह से रहित होना चाहिए, और समस्त परिग्रह अंतरंग और बहिरंग सब परिग्रह से रहे। धर्म दयाजुत, कितने आसानी से परिभाषाएं बता दी। हमारे देव कौन, जिनेन्द्र। हमारे गुरु कौन, परिग्रह रहित। हमारा धर्म कैसा, दया, दया से युक्त। होगी हमारी परिभाषा देव गुरु, सत्य देव गुरु शास्त्र की परिभाषा, इससे आसान एक लाइन में, ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, सच्चे देव कौन है, जो भी इतरागी है तो उपदेशी है, वो जिनेन्द्र हैं। और सच्चे गुरु कौन है, परिग्रह से रहित जो हैं। सच्चा धर्म कौन सा है, दया धर्म सच्चा धर्म। बस ये हुमान समकित, ये सब कारण हैं, ये सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे। इनको मैंने सम्यक दर्शन मत मान लेना कि इतना हो गया तो सम्यक दर्शन, ये तो कारण है जिसकी वजह से हम सम्यक दर्शन को पाएंगे। और इतने ही नहीं, आठ अंगों से ये युक्त होना चाहिए, बस इतना ही रहने दें। वे आठ अंग कौन कौन से हैं, तो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उद्गुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। पहले वात्सल, फिर स्वर्गम, ये आठ अंग हैं। इनके अलग अलग स्वरूप अपन बाद में पढ़ेंगे। निशंकित मतलब शंका नहीं करना, निकांक्षित मतलब आकांक्षा नहीं करना, निर्विचिकित्सा मतलब घृणा नहीं करना, और अमूर्ता, सुपरस्टिशंस नहीं होना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, उपगुहन दूसरे के दोषों को ढकना, अपने दोषों को उघाड़ना, दूसरे के गुणों को उघाड़ना, अपने दोषों को ढकना, नहीं अपने गुणों को ढकना, उल्टा हो गया। इस तरह उपगुहन, स्थितिकरण, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विचलित होता हो तो उसे पुनः स्थित कर देना, वास्तव साधर्मी के साथ प्रेम भाव रखना, प्रभावना जहां बैठो वहां अपने धर्म की बात करना, हो गया। शॉर्ट में तो जो है आठों बातें अपने आप आ जाएंगी, जिसकी दृष्टि निर्मल होगी ये आठों चीजें ऑटोमेटिकली उसके भीतर आ जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आठ अंगों से युक्त है, और अब आगे जो है इन्हीं आठों के लिए एक चार लाइनों में ये पूरा बता देंगे बस। फिर आठ मत से रहित होता है, छह अनायतन से रहित होता है। अच्छा, ये पूरा बताएंगे इसमें,
पूरा
चैप्टर
आ गया,
ठीक, पूरा चैप्टर आ गया, चैप्टर लिखा है, ये हो गया इतना, बस इतना ही रहने दे, है ना।
अब 30 दिसंबर का प्रवचन शुरू होता है।
विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समाह। तो रिवाइज तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है रिवाइज करने की, शुरू करें। तीसरी ढाल में दो चीजें तो अपन ने समझ ली कि हमारी अपनी अज्ञानता हमारी भटकन और दुख का कारण है, और हमारी अज्ञानता यही है कि हम ठीक ठीक हमारी मान्यता नहीं है, ठीक ठीक हमारा ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक हमारा आचरण नहीं है, और उसी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा गया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये सब चीजें एक तो हम बहुत शुरू से अपने साथ लिए हुए हैं संस्कारवश, और दूसरा हमने यहाँ आकर भी जो अडॉप्ट की है वो भी, मैंने जो सच्चे देवगुरु शास्त्र नहीं है उनके द्वारा हमने अपने जीवन में कुछ मान्यताओं को गलत सलत किया है, तो वो भी वो ग्रहित मिथ्याच है, और एक अग्रहित है जो हमेशा से हमारे साथ चला आ रहा है। इस तरह से दो तरह की अज्ञानता है हमारे अंदर, एक तो बाई बर्थ हम अज्ञानी हैं, या जब से हमने जीवन शुरू किया तब से अज्ञानता है, और कुछ अज्ञानी लोगों के बीच रह करके भी और हमने अज्ञानता सीखी है, दोनों तरह की। अब हम चाहते हैं कि इस अज्ञानता से बचें और जो सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त करें, तो उसके लिए कहते हैं कि जो दुख से रहित सुख है वो तो निराकुलता में है, आकुलता बिन कहिए। सच्चा सुख तो आकुलता से रहित है, और वो आकुलता से रहित स्थिति कहाँ पर है, तो कहते मोक्ष में है। तो फिर मोक्ष के मार्ग पर लगना चाहिए हमारे। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं बोलना कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है, अकेला अकेला नहीं है इंडिविजुअल। अब उसमें से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की तीनों की परिभाषा बना लेते हैं। दो तरह से हम सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? आत्मा में रुचि होना और अपने आत्मा स्वरूप को जानना, ये सम्यक ज्ञान, और अपने आत्मा में लीन होना, यही सम्यक चारित्र है। ये हमें प्राप्त करना है। अब इसके प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? तो कहते हैं सात तत्वों का श्रद्धान। वे सात तत्व कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव क्या है? तो जो चेतना वाला है वो जीव है। और कितने प्रकार के जीव होते हैं मोक्ष मार्ग की दृष्टि से? तीन प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तो शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मान के जीते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। वे भी तीन हैं, जिसमें जो परिग्रह से रहित हैं, मुनि हैं, शुद्ध योगी हैं और अपने आत्मा का ध्यान करने में लगे हैं, वो उत्तम अंतरात्मा हैं। और जो मध्यम हैं, वे देश व्रत को धारण करने वाले श्रद्धालु जीव हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो देश व्रत को धारण करते हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैं, और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं ऐसे बिना व्रत नियम संयम वाले जीव वो मध्यघन अंतरात्मा हैं। उपयोग तीन प्रकार का होता है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभ किसे कहेंगे? बोलो, अशुभ उपयोग किसे कहेंगे? उपयोग के मायने क्या? हाँ, उसको अपन कहेंगे विषयों के प्रति जो अनुरक्त हैं, विषयानुरागः। विषयों में जो अनुरक्त हैं वे, जिन क्षणों में हमारा मन विषयों में अनुरक्त होता है वो अशुभ उपयोग है। और शुभ उपयोग कौन सा है? धर्मानुराग। जब धर्मानुराग है तो शुभ उपयोग। और वीतराग, राग सिर है निरुपराग या वीतराग, उसको क्या कहेंगे? शुद्ध उपयोग। ये इस तरह से जीव को हमने क्लासिफाई कर दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा की स्थितियां दो हैं, एक सकल और निकल। कल के मायने होता है शरीर, तो जो शरीर के साथ है वे सकल, और जो शरीर से रहित हैं वे निकल। तो उन्हीं को अपन अनंत और सिद्ध बोलते हैं, यही हमारे परमात्मा हैं। हमें क्या करना चाहिए? उपदेश देते हैं, बहिरात्मा पना छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये इसमें मेन चीज हो गई अपने को। जीव तत्व अपन ने जान लिया। अजीव तत्व क्या है? तो अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव तत्व है। वो पांच प्रकार का होता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से पुद्गल कौन सा है? जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है। और वो रूप, रस, गंध, स्पर्श कितने प्रकार का है? तो 20 प्रकार का है। पांच प्रकार का रूप है, हैं? पांच प्रकार का रूप है, पांच प्रकार का रस है, दो प्रकार की गंध है, आठ प्रकार का स्पर्श है। ये सब अपन को मेरे ख्याल से इतना ही रिवाइज करें। फिर उसके बाद आ जाता है पुद्गल के बाद धर्म, जो कि जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक, ऐसी परिभाषा बनाना। हम अगर ठहरना चाहें तो सहायक है उसको क्या बोलेंगे? अधर्म द्रव्य। और फिर उसके बाद जो सभी द्रव्यों को जगह दे, स्थान दे, अवकाश दे, उसे क्या कहेंगे? आकाश। काल जो परिवर्तन का प्रतीक है, हैं? जिस जो परिवर्तन को नापता है उसे काल कहते हैं, निरंतर होने वाले परिवर्तन को निश्चय काल कहते हैं, और जो घड़ी घंटा है दिन रात है उसको व्यवहार काल कहते हैं। इस तरह से अपन ने काल के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा, ये पूरा अजीब अजीब तत्व हो गया। फिर उसके बाद आश्रो, आश्रो किसे कहेंगे? इसमें क्या है परिभाषा सेठाला में?
हाँ,
वो बेटे दूसरी लाइन है। पहली लाइन में क्या है?
मन वचनता
है। नहीं, ऊपर वाली लाइन याद करो, पहली वाली लाइन आश्रो मन वच काय त्रियोगा है ना। फिर उसके बाद मिथ्या अविरति अरूपशाय, ये तो ये भी कहेंगे उसमें, लेकिन सबसे पहले क्या कहना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र जी याद रखना, काय वांग बना कर्म योगा शास्त्रवा। एक्चुअली तो ये है अपने को पढ़ना, तो ध्यान में ये रखना कि मन वचन काय की क्रिया के द्वारा जो कर्म आते हैं उसे आश्रो कहते हैं। तो मन वचन काय तो हो गया अंतरंग कारण, और जो कर्मों का आना है वो वायु हो गया, उसी को मन द्रव्य आश्रय कहते हैं, और जो मन वचन काय की क्रिया है उसको भाव आश्रय कहेंगे। तो मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों में आने वाले कर्मों को, कर्मों का आना उसको बोलेंगे आश्रय, और फिर आत्मा का कर्मों के साथ बंध जाना, एक मेक हो जाना दूध पानी की तरह, उसको बोलेंगे बंध, आश्रय बंध। फिर उसके बाद कर्मों का आना रुक जाना, समदमते क्या है? नहीं, हाँ, समदमते जो कर्म ना आवे, सो संवर आदर ये, जो हम श्रम का मतलब क्या है? कषायों का शांत समन करना, और दम का मतलब क्या है? इंद्रिय और मन को जीत लेना है। तो श्रम दम के द्वारा संवर करते हैं, और तप बलते विधि कर्म निर्जरा, और इच्छाओं के निरोध करने से ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन उसको बोलते हैं निर्जरा। और मोक्ष क्या है? रहित अवस्था, सब कर्मों से रहित अवस्था। कैसी है वो? सुखकारी है, फिर सुखकारी, फिर भी है ना शब्द, है ना, जैसा मोक्ष कैसा है? स्थिर, मतलब एक बार प्राप्त हो जाता है तो फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, और हमेशा सुख देने वाला है। ये इस तरह से सात तत्वों के बारे में अपन ने जान लिया। फिर उसके बाद ये सात तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और सात तत्वों की श्रद्धान में कारण कौन बनेगा? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होना। क्रम से हो रहा है, देखो, आत्मा में रुचि हमें बढ़ानी है, तो आत्मा में रुचि कैसे बढ़ेगी? तो कहते सात तत्वों का श्रद्धान करो। सात तत्वों का श्रद्धान कैसे करेंगे? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो। स्टेप है ये। तो इस तरह अपन ने क्या समझा, इतनी सारी सम्यक दर्शन की परिभाषाएं हो गई, उन सब में विरोध नहीं है, वो सब क्रम क्रम से। सबसे पहली परिभाषा कौन सी रहेगी? कहते सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा। फिर उसका दूसरा स्टेप चढ़े, सात तत्वों का श्रद्धान। फिर तीसरा आत्मा में रुचि, या कि आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना, ये भेद विज्ञान, आपा पर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते। ये ऊंची स्थिति होगी आत्मरुचि, और फिर उसके बाद आत्म विशुद्धि लास्ट स्टेज है। इस तरह से ये परिभाषाएं स्टेप वाइज है, ऐसा नहीं समझना कि अलग, एक दूसरे के लिए कारण है ऐसा। तो देव कौन है? एक शब्द में बोलेंगे अगर अपन, तो सच्चे देव कौन?
मित्र।
एक शब्द में बोलो, जल्दी से जल्दी से, जिनेंद्र देव, जिनेंद्र एक शब्द में। अगर कोई कहे कि सच्चे देव, जिनेंद्र, और फिर गुरु कौन? परिग्रह रहित। सीधा सीधा ऐसा बोलो ना, जो परिग्रह रहित वे हमारे गुरु, और धर्म दयायुक्त, वीतराग धर्म। दूसरे तरह से कह सकते हैं, जो वीतरागी हैं वे हमारे देव, जो वीतरागी हैं वही हमारे गुरु, और जो वीतरागी है वही हमारा धर्म। सब में एक सा लगा सकते हैं, नहीं याद रहे तो, और नहीं तो जिनेंद्र, और परिग्रह रहित गुरु, और दयायुक्त धर्म। ये सीधी परिभाषा है, ये सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं, इनके इनके मिलने पर ही हमारा सम्यक दर्शन आगे बढ़ता है। और वो सम्यक दर्शन आठ अंगों से युक्त है। कल आठ अंग पढ़ लिए थे अपन ने, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ हैं। अब देखिएगा, एक ये आठ अंग तो इन्होंने कह दिए, पर अब आगे जो है वो ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के दोष कौन कौन से हैं। अभी आठ अंगों का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं वो, अभी ये कर रहे हैं कि 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन में जिनसे हमें बचना चाहिए। अब सम्यक इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे बहुत मुश्किल से तो हम दर्पण खरीद के लाए और अपना चेहरा देख रहे हैं ठीक ठीक उसमें कि हाँ ये हमारी वास्तविकता ये है, तो धक्का लगने के चांसेस ज्यादा हैं, दर्पण टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, या कि उसके गंदे हो जाने के चांसेस हैं। तो कहते कैसे सेफ्टी करें, उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, इनको ऐसा समझे, दोष सम्यक दर्शन के दोष ना मान के प्रिकॉशंस लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ में पड़ जाएं, इतनी कीमती चीज हमारे हाथ से स्लिप कर जाए। तो कहते हैं अगर इनसे बचेंगे तो आसानी रहेगी। बस उमद टाटा है जिसको मालूम है, कृपया करके वो चुपचाप रहे क्योंकि जिसको मालूम नहीं है सब मत जो है आठ में ही है। मत का मतलब अहंकार है, गर्व है, घमंड है, अपनी योग्यता से अधिक प्रशंसा की आकांक्षा करते हैं। जब हम ज्ञान तो जरा सा है और चाहते हैं कि प्रशंसा हो, तो केवल ज्ञान से टैली कर लो कि केवल ज्ञान की अपेक्षा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। पूजा थोड़ा सा हमको मान सम्मान मिलने लगा तो हम खुश हो गए, कहते नहीं सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा, ज्ञान का मद नहीं करेगा, पूजा का ज्ञानम पूजाम कुल, मैं तो मेरे माँ का वंश जो है बहुत ऊंचा है और जाति मेरे पिता का वंश बहुत ऊंचा है, क्या बोलेंगे जाति उल्टा बोलेंगे, कुल पिता का है और जाति जो है माँ की है, ठीक, कुल का और जाति का भी अहंकार नहीं करेंगे, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल का अपने शरीर के बल का भी अहंकार नहीं करेंगे, वृद्धि अर्थात अपने प्रभाव का भी अहंकार नहीं करेंगे, सब आ जाएगा इसमें प्रभाव में, और बल वृद्धि, वृद्धि में वैभव भी आ जाता है, मुनि के लिए वृद्धि हो जाएंगी और आपके लिए वृद्धि क्या है, एक कार वृद्धि हो गई दो कार से थोड़ी और ज्यादा वृद्धि ऐसी नहीं वृद्धि पहले हाथी घोड़ा होते थे तब हम उसको मालूम क्या कहते हैं, हाथी मतलब कार और घोड़ा मतलब तो मैंने कहा हाथी घोड़ा अलग हाथी मतलब कार, तो ये वृद्धि हो गई, वृद्धि का भी नहीं करेंगे, बल वृद्धि तपो बपू, थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अहंकार करने लगे, कहते वो भी नहीं करना, और शरीर की सुंदरता का भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि तीर्थंकर से सुंदर तो कोई नहीं होता और अपनी आत्मा से सुंदर शरीर थोड़ी हो सकता, ये वहां पर भाव। तो ये आठ मद हैं, इनको नहीं करना, और निवारी त्रिषटता, षट षट मतलब होता, षट कहते ना अपन बड़े मूर्ख हो मतलब अविवेकी, विवेक ही नहीं है, तो तीन प्रकार के अविवेक हो सकते हैं, सुपरस्टिशन उनको अपन कह सकते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, लोक में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनको कि धर्म मानते लोग करते हैं, गंगा में नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे, अरे भैया गंगा में नहाने से तो शरीर पवित्र होगा आत्मा थोड़ी पवित्र होगी, ज्ञान की नदी में नहाओ तो पवित्र हो। तो कहते ये लोक मूर्ता है कि गंगा में नहाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, या कि पहाड़ से नीचे गिरेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, इस तरह की मान्यता, ये सब लोक मूर्ता है, लोक में प्रचलित जो अंधविश्वास है उनमें उनसे बचना, क्योंकि आपकी दृष्टि गड़बड़ा सकती है इस तरह से। और देव मूर्ता जो रागी द्वेषी है, जिनका अभी खुद का कल्याण नहीं हुआ, जो संसार में खुद भटक रहे हैं, उनको भगवान मानना, तो ये जो है ये भी अविवेक वाला मामला, ये भी मूर्खता वाला काम है, है? और गुरु जो कि परिग्रह सहित हैं, आरंभ सारंभ में लगे हैं, सब घर गृहस्थी उनकी है, उनको ही जो है गुरु मान लेते हैं, तो कहते ये भी जो है गड़बड़ हो सकती है इसमें, अपने सम्यक दर्शन में इसमें कमी आ जाएगी, दोष लग सकता है। इस तरह ये तीन प्रकार की मूर्ता, इसी को बोलते हैं गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता और देव मूर्ता, और षट अनायतन, सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा जो भी हैं देव गुरु शास्त्र वो और उनके फॉलोअर्स, ये छह हो गए, हैं रागी द्वेषी देव उनके फॉलोअर्स, रागी द्वेषी गुरु उनके फॉलोअर्स, राग द्वेष को हिंसा को धर्म कहने वाले शास्त्र और उनको मानने वाले लोग, ये छह हो, इन्हीं को अनायतन बोलते। आयतन का मतलब होता है जो हमारे कल्याण के लिए हमें मदद करें, सहायक हों, और अनायतन मतलब जो हमारे संसार में भटकाने वाले हैं, सीधा सीधा ऐसा अर्थ लेना। आयतन का मतलब है जिन बिंब की जिन बिंब को आयतन बोलते हैं, जिनालय को आयतन बोलते हैं, और गुरु को भी जो सच्चे गुरु हैं उनको भी आयतन बोलते हैं और उनके फॉलोअर्स को भी आयतन बोलते हैं। देखो हाँ, श्रावक को भी, श्रावक भी आयतन, आयतन मतलब जिसके माध्यम से हमें सच्चा रास्ता मिलेगा। तो कौन हो सकता है? सच्चे देवगुरु शास्त्र और उनके फॉलोअर्स, छह लोग हो गए इस तरह से। ये छह अनायतन और आयतन, तो छह अनायतन से बचना चाहिए। शंका अधिक वसु दोष बिना संवेगातिक चित पागो, और शंका आदि, वसु मतलब होता आठ, शंका आदि आठ जो निशंकित इत्यादि आठ अंग हैं गुण थे उनसे उल्टे, ठीक है ना? नहीं आया समझ में? देखो पहले अपन ने क्या कहा था, आठ अंगों से युक्त, तो आठ अंग कौन से थे? निशंक, अभी बताएंगे कौन कौन से आठ अंग, निशंकित, अब शंका नहीं करना, लेकिन आप शंका कर रहे हैं तो वही तो गड़बड़ी होगी, वो दोष होगा। आपको आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, आपने आकांक्षा कर ली। आपको मुनियों से घृणा नहीं करनी चाहिए थी, आपने घृणा कर ली, तो गड़बड़ हो गई, वो दोष हो गया। जो जो गुण थे वो सब दोष में बदल सकते हैं अगर आप वैसे फॉलो नहीं करोगे। वही कह रहे हैं कि ये आठ दोष हैं, इनसे रहित कितने हो गए? आठ मद, आठ दोष, तीन मूर्ताएं, छह अनायतन, इस प्रकार कितने हो गए? पूरे 25 हो गए। संवेगाधिक चित पागो, संवेग के मायने मालूम क्या होता? धर्म के प्रति अनुराग, संवेग। और दूसरा अर्थ होता है संसार के दुखों से भयभीत होना, ये भी संवेग है। संसार के दुख से भयभीत हो रहे हैं और धर्म में रुचि ले रहे हैं। संसार के दुख से भयभीत होकर भाग जाना तो कहाँ जाओगे? कहते धर्म में रुचि ले, दो अर्थ है। इसलिए अपन सामान्य रूप से कि संसार के दुखों से भयभीत हो गए तो पलायन कर जाएंगे क्या? कहते नहीं, इतना अर्थ नहीं है। संसार के दुखों से बचने के लिए धर्म में रुचि लेना, ये संवेग है। संवेगाधिक, संवेगाधिक चित पागो, संवेग के साथ आदि शब्द लगा हो तो चारों ले लेना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम का मतलब कषायों का शांत रहना, कम मंद कषाय वाला जीव है, ये भी आवश्यक। सम्यक दृष्टि अगर ज्यादा कषाय कर ले 6-6 महीना तक तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। 6 महीने के बाद अगर किसी से किसी के प्रति वैर भाव है तो सम्यक दर्शन का हिसाब किताब गड़बड़, इसलिए प्रशम भाव। और संवेग, सम्यक दृष्टि तो है लेकिन संसार में ही चित्त लग गया उसका, और उससे तो फिर संसार में जिसका चित्त जितना ज्यादा लगा उतना धर्म में कम लगेगा, धर्म में रुचि कम हो जाएगी, संसार में रुचि ज्यादा हो गई। तो कहती नहीं, संवेग ध्यान में रखो, संसार में ज्यादा रुचना पचना नहीं, धर्म में रुचि रखना, संवेग। फिर अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया, उसको दूसरी भाषा में कहते हैं अपने एक्चुअली अनुकंपा की, सब जीवों के प्रति मैत्री रखना, उन्हें कभी दुख ना हो इस प्रकार का भाव रखना। मैत्री मतलब मित्रता नहीं, किसी को दुख ना हो ऐसा भाव रखना, ये मैत्री है। और दूसरे के दुख से कप जाना, ये अनुकंपा है। और आस्तिक मतलब आत्मा में विश्वास रखना, आस्तिक गुण कहलाता है, या सार्थकों में विश्वास रखना। ये चारों चीज आ गई, संवेग भी आ गया, प्रशम भी आ गया, अनुकंपा, आस्तिक, सब आ जाएंगे, इन इनसे युक्त होना। अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप हूं कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। इतनी बढ़िया लाइन लिख दी इन्होंने कि आठ अंगों को हम आगे कहेंगे और 25 दोषों को भी हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, संक्षेप में करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम गुणों को भी बता रहे हैं, दोषों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब दोष को दोष नहीं मानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, और गुणों को गुण नहीं मानेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए हम दोनों को बता रहे हैं, दोष भी बता दे रहे हैं, पर दोष ऐसा नहीं कि दोष मालूम पड़ जाए तो करना शुरू कर दो और गुण मालूम पड़ जाए तो छोड़ना शुरू, ऐसा कोई नहीं करेगा। गुण कैसे तजिए गहिए, अब देखो एक एक लाइन में बहुत आसानी से जो है बता दी। जिन बच में शंका न था, कोई पूछे निशंकित के मायने क्या है छह डाला में, तो कहते जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ऐसा है कि नहीं? क्या पता, कहते तो हैं। देखो अज्ञानतावश पूछना कि भगवान ये कैसा है, ये समझ में नहीं आया, मेरी अल्प बुद्धि में आता नहीं, पर भगवान ने जो कहा वो तो ठीक है पर मेरी बुद्धि में नहीं आता, ये बात जुदी है। शंका करना, शंका समाधान करना, क्वेश्चनिंग करना अलग चीज है, और डाउट क्रिएट करना, कंफ्यूजन वो नहीं, कंफ्यूज भी नहीं है, डाउट भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान की अल्पता की वजह से क्वेश्चन उठता है, मन में प्रश्न उठ जाता है, तो प्रश्न बुरा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करना, कहते तो हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से मोक्ष होता, क्या पता होता है। हाँ, ये शंका हो गई, ऐसा नहीं। ठीक कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है मैं तो जानता ही नहीं, ऐसा कहना ये तो सिर्फ जानकारी हासिल करना, और ऐसा कह देना कि क्या पता, कहते तो है होता कि नहीं, डाउट क्रिएट हो गए। तो
महाराज जी भावों का ज्यादा,
भावों का अपन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाव तो कैसे दिखा सकेंगे, भावों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वही धारी शंका न धारी ब्रश, इसको ऐसे नहीं लेना, इसमें जिन वच में शंका न धारी ब्रश, धर्म को धारण करके जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ब्रश का मतलब होता धर्म, ऐसा है नहीं आया क्लियर? वो जिन वच में शंका ना, ठीक है, और धारी ब्रश धर्म को धारण करके, जिन धर्म को धारण करके फिर जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, पहले एक बार तय कर लो क्या करने का है, फिर उसके बाद फिर भी गड़बड़ में नहीं पड़वा। एक बार कि हमें इस रास्ते पर जाना, अब चल तो पड़े, कहा पता पहुंचेगा नहीं पड़े, तो फिर काय को चले, दूसरे फिर चलो दूसरे पे चलो। एक बार तय कर लिया, इसलिए कह रहे हैं कि धारी ब्रश, एक बार धर्म धारण कर लेने के बाद फिर उसमें शंका वंका वाला काम नहीं, फिर डाउट नहीं करना, नहीं तो दो ही दिन से गए। इसलिए धारी ब्रश भव सुख बांछा भाने, अब संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं करना। जब मैंने मोक्ष के सुख की आकांक्षा करी है तो कहे को फिर मैं संसार के सुख की आकांक्षा करूंगा, ये निकांक्षित अंग हो गया, ये गुण है मेरा कि मैं अब संसार के सुख की आकांक्षा, इसको मैं दूसरी तरह डिफाइन करता हूँ, व्यक्ति संसार के सुख की आकांक्षा तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, मुझे अच्छा यश और वैभव मिले, मैं जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना कर सकूं, इसके लिए मेरे को पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, तो इच्छा तो कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं, हाँ मैं संसार में सुख है ऐसा नहीं मान रहा हूं, ना मैं संसार के सुखों को चाह रहा हूं, मैं तो अपनी नेसेसिटीज जितनी भी हैं उनको पूरा करूंगा, सुख तो मुझे मालूम है कि मोक्ष का ही सुख है वास्तव, और अगर मैं रास्ते से मंदिर जा रहा हूं, कोई कहे कि 1,00,000 रुपए दूंगा या 10,00,000 दूंगा, मंदिर मत जाओ, तो कहेंगे रखे रहो अपने पास, मंदिर तो जाऊंगा, इनको धर्म छोड़ दो मैं तुम्हें ऐसा ऐसा दे दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम नमोकार छोड़ दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, तो और मार और देगा वो, है कहानी याद की। उसने कहा था कि नमोकार लिखो, शुभम चक्रवर्ती को नमोकार लिख करके मिटा दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, उसकी अकल मारी गई, उसने कहा इसी नमोकार से तो बचे, उसको ये नहीं ध्यान में आया, मिटा दिया उसने, तो वो यहाँ पर है कि मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैं संसार में सुख नहीं मानता हूँ, ना संसार के किसी सुख की मुझे आकांक्षा है, पर संसार में जो चीजें आवश्यक है वो तो मैं करूंगा, क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है कि क्या निकांक्षित होता है, क्या एकदम कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता है, सब चाहता संसार की जो जो चीजें हैं, लेकिन उनमें सुख नहीं मानता। ये मुनि तन मलिन न देख घिना है, है? मुनि से अर्थ यहाँ पर है सब ले लेना, जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, आचार्य उपाध्याय साधु आपके देशव्रति और हमारे साधर्मी सब, सबके लिए जो तपस्या में लगे हुए हैं उनके वे आय, एक्चुअली मुनि चूंकि स्नान नहीं करते हैं इसलिए शरीर जो है तपस्या के द्वारा मलिन हो सकता है, तो उसको देख करके घृणा नहीं करना, कह रहे ये कैसा इनका है शरीर, तो ये निर्विचिकित्सा अंग हो जाएगी। इसमें दूसरा और दिया है कि दूसरे के दोषों से घृणा नहीं करना, ये भी है इसका, हाँ निर्विचिकित्सा में ये अर्थ भी लिया है कहीं कहीं पर, इसमें तो सीधा लिया कि मुनितन मलिन देश, अपने अपने दोषों को दे, अपने इसमें ये है दूसरे के दोषों से घृणा नहीं करना, उससे पापी से घृणा नहीं करना, ये भी ब्रॉड उसमें दिया निर्विचिकित्सा में। तत्व को तत्व पहचाने पिछाने, मतलब पहचाने सच, तत्व का मतलब है यहाँ पर सच्चाई ले लें अपन, और कुतत्व क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 363 मान्यताएं हैं भैया अपने यहां माना गया, 363 विभिन्न मत मतांतर हैं, तो जो सही मत है और जो गलत है उसको जानो, कोई दिक्कत नहीं, जानने में कोई दिक्कत नहीं। जितने भी दर्शन हैं सबके यहाँ कौन कौन से कितने तत्व कहे गए सबका ज्ञान रखो, लेकिन कसौटी पर कस करके जो सही उतरता उसको ठीक ठीक जानो। अमूल अर्थात किसी में, हाँ किसी में कहना चाहिए इंडल्ज नहीं होना, किसी एक ही में नहीं चिपक जाना कि ये ऐसा है, नहीं सबको जानो और उसमें जो सही है उसको फॉलो करो। अमूर दृष्टि, मूड नहीं है, मूड का मतलब होता अविवेक पूर्ण भी होता, अपन ने मूर्ता शब्द का डिफाइन किया, मूड मतलब अज्ञानता, हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, किसी ने ये कह दिया तो वही ठीक मान लिया, किसी ने ये कह दिया तो वही ठीक मान लिया। मैं इसको दूसरे तरह से कहता हूँ कि अगर चार रास्ते हैं और मुझे सीधे रास्ते पर जाना है तो फिर तीन रास्तों पर चाहे सोना बिछाओ मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी अमूर्ता है, ये मेरा विवेक कि मैंने सच जो हमें तय कर लिया उसी पर जाऊंगा, या कि बहुत सारे और चमक धमक दिखा सकते हैं और दूसरे रास्तों की कि ये सही है, देखो इस पर तो बहुत सुविधा है, तुम तो इस पे जा रहे हो और बहुत तकलीफ में हो, तो ये मार्ग तो ठीक नहीं है। विवेकानंद को किसी ने कहा था कि आपने ये मार्ग फॉलो किया तो इंद्रिय के सुख सब छोड़े, भगवान मिला कि नहीं मिला? कहते भगवान तो नहीं मिला। तो कहते भगवान नहीं मिला तो क्यों कर रहे हो? बोले तुम मुझे ये समझाना चाहते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ा और मुझे भगवान नहीं मिला तो मैं पुनः उसको ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा गमन है, मुझे जब मिलेगा तो इसी से मिलेगा, अभी नहीं मिला बात को मिलेगा। ये फर्मनेस कहलाती है, ये दृढ़ता अमूर दृष्टि कहलाती है कि मैं अपने सच्चे मार्ग पर निकला हूँ, तो बाद में कई लोग आकर कहेंगे अरे इसमें क्या रखा है इसमें, तो उसको नहीं सुनना। तत्व और कुतत्व को पहचानना, ये सही है ये गलत है, गलत को गलत मान के आगे बढ़ जाना, और निज गुण अरूपर अवगुण ढांके, यही मैं उल्ट हूँ सब। निज गुण अपने गुण तो प्रकट करते हैं और दूसरे के अवगुण नहीं, अपने अपने गुण निज गुण अरूपर अवगुण ढांके, दोनों अपने गुण को ढकना सो अपने गुण तो करते प्रकट, और दूसरे के दोष ढकना सो दूसरे के दोष कर देते प्रकट। कहते सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा, अपने दोष प्रकट करेगा और दूसरे के गुण प्रकट करेगा, और जब ढकना होगा तो अपने गुण ढक लेगा कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेगा। ये इसी को बोलते उपगुहन, साधर्मी के दोषों को ढकना, क्योंकि कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है गिर भी सकता है, फिसल भी सकता है, उसमें कमी भी आ सकती है, तो उस क्या करें हम अब, तो उस कमी को एलोबरेट नहीं करना, मैनिफेस्ट नहीं करना, खूब उसको फैलाना नहीं, उसको इग्नोर करना, तो इस ऐसा करने से तो उसके दोष बने रहेंगे। तो कहते नहीं, उसके बाद एक और है स्थितिकरण। स्थितिकरण में क्या लिखा, काम ये इनने पहले जिन धर्म बढ़ावे, अर्थात जब हम जिन धर्म बढ़ावे, इससे जो है हमारे अपने धर्म की बढ़ाई ही होगी, अगर हम अपने धर्मात्मा के दोष बताएंगे तो हमारे धर्म की निंदा होगी, क्योंकि धर्म तो बिना धर्मात्मा के नहीं रहता, इसलिए ये लाइन लिखना पड़ी, वह जिन धर्म बढ़ावे, हम अगर अपने धर्मात्मा के दोष छुपाते हैं तो जिन धर्म को बढ़ा ही रहे हैं, और अगर हम अपने धर्मात्मा के दोष बताते हैं तो अपने धर्म को घटा रहे हैं, इसलिए उपगुहन के साथ ये लाइन लिखना पड़ी। ठीक बात है, मैं आपसे जो
निज धर्म
निज गुण अर ऊपर अवगुण ढांके वा निज धर्म बढ़ावे, ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो जिन धर्म बढ़ावे है। बात एक नहीं है, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्योंकि नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निज धर्म भी ठीक रहेगा, इसलिए रहेगा, हाँ निज धर्म रहेगा, उसको एक नाम और है उपब्रह्मण। उपब्रह्मण अर्थात अपने गुणों को बढ़ाना, अपने गुणों को ढकना और दूसरे के दोष भी ढकना, और साथ साथ अपने धर्म अपने गुणों को बढ़ाना, ये भी है उसका अर्थ, ये ठीक है। निज धर्म बढ़ा, इसलिए जिन धर्म बढ़ावे, जिन धर्म दीपावे वो तो आगे आ जाएगा, प्रभावना हो जाएगी, इसलिए निज धर्म इसमें ठीक। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी के दोष दिख भी जाते हैं तो पहली बात कहना नहीं, कहने का मन हो जावे नहीं, एक तो पहली बात कि दूसरे के दोष देखना नहीं अपनी तरफ से, और अगर दिख जावे तो कहना नहीं, और कहने का मन हो जावे तो उसी से कहना या उसके गुरु से कह देना, या गुरु मतलब जो उसको ठीक ठीक संभाल सके उससे कहना। जैसे कैसे, तो कहते जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के प्रति व्यवहार करता, वैसा पेशेंट आकर के और बताता है कि ये रोग है, तो डॉक्टर कभी क्या माइक लगा कि ये कहता कि देखो तो भैया जी को कैंसर हो गया, देखो भैया जी को टीबी हो गई, ऐसा कहता है क्या? नहीं, कभी नहीं। उस रोगी को भी नहीं बताता कि तुम्हें क्या हो गया, उसके घर अगर ज्यादा बड़ा हो जाता तो घर के लोगों को भाई थोड़ा सीरियस है ना, इतना धीरे से कह देता है। और फिर वो पूछता कि हो क्या गया, तुम तो दवाई खाओ 8 दिन ठीक हो जाओ, मुझे 8 दिन बाद थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर बता देते हैं कि देखो गड़बड़ की थी तुमने, ऐसा रोग हो गया था। हमें उपगुहन करना भी आवश्यक है और उन दोषों को निकालना भी आवश्यक है, मैं ये कह रहा हूं। ऐसा नहीं समझना कि कोई के भीतर दोष है तो दोष बने रहने दो, नहीं, उन दोषों को उघाड़ोगे तो दूर थोड़ी होना है, दूर करने का उपाय करो। तो दोष दो प्रकार से देखे जाते, एक तो दूसरे को गिराने की दृष्टि से और एक दूसरे को दोष से मुक्त करने के लिए भी दोष दिख जाते हैं, तो उसमें सपन को कौन सा अपनाना। दूसरे के दोष दिख भी जावे तो उसके लिए नीचे गिराने के लिए दोष नहीं कहना, बल्कि उसको ऊपर उठाने के लिए उन दोषों को निकालना, ये उपगुहन में सारा काम इसी के अंतर्गत। ये सम्यक दृष्टि कर सकता है, बाकी नहीं, मन में तो भाव आ ही जाता, थोड़ा किसी का दोष दिख जावे तो कहने का मन हो जाता, और कहने का क्या, उसको जलील करने का या कि उसको नीचा दिखाने का मन तो हो ही जाता, कितने भी कर लो आप, कोई कोई भीतर भीतर मन में, बाहर नहीं हो पावे हिम्मत तो, लेकिन भीतर तो आ ही जाता। कहते वो वहां सम्यक दर्शन चला गया आपका, एक अंग भी अगर कम है तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया। फिर कहते काम आदिक कर भ्रष्टे चिगते, काम आदिक अर्थात संसार के जो भी राग द्वेष कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब से कोई व्यक्ति उनकी वजह से प्रेरित होके, क्योंकि संस्कार तो वही है अनादिकाल का, क्रोध मान माया कषायों का संस्कार, अगर धर्म में लगने वाला भी अगर कभी कषाय कर ले वे तो कहते उसको समाप्त। दर्शना चरणा द्वापी चरताम धर्म वसलई प्रत्यवस्थापनम प्राग्ञ स्थिति करणम उच्चते, कोई सम्यक दर्शन से, कोई ज्ञान से, कोई सम्यक आचरण से, या तीनों से कोई भ्रष्ट होने लगे तो उसको पुनः अपने मार्ग पर स्थित कर देना, यह स्वयं ही दोनों है उसमें, निज पर को सुदृढ़ावे। स्वयं भी अगर कषाय बस धर्म छोड़ने का मन हो जावे कषाय के उदय में, मोह के उदय में, तो अपने को संभालो, और दूसरा कोई साधर्मी है और वो गिर रहा है तो उससे उल्टा ये नहीं कहो कि हमने तो पहले ही कही थी तुम्हारे बस को नहीं छोड़ो और छोड़वा दिया उसको, ऐसा नहीं, उसको दृढ़ करवा रहे भैया बहुत मुश्किल से मिलता, छोड़ो मत। उपवास में तो बहुत होता है, उपवास कर लिया अगर किसी ने और उससे नहीं सदा संजात हो और उसके मन में आ गई तो कायम करो, ऐसा कहें कायम करो, उसको ये नहीं कहेंगे कि अरे 12 घंटे हो गए तुमने कुछ नहीं खाया, अब क्या थोड़ी रात हो गई, रात निकली तो दूसरे दिन तो दर्शन वर्शन करके अपन को करना ही भोजन, अब तो बहुत शाबाश, निकाल दो पानी वानी पीना हो तो पी लेना, नहीं तो आकुलता मत करो। बस इतना कह के उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, उल्टा जो है बढ़ा देते तो कह रहे हैं कि कामा अधिक कर भ्रष्ट, अगर कोई को कषाय वश और अपने धर्म से विचलित होने लगे तो उसको फिर से धर्म में स्थित कर देना, इसको स्थितिकरण बोले, स्वयं को भी और दूसरे को। साधर्मी सो गौ वच्च प्रीति सम, अगर प्रीति करना है तो गाय बछड़े के समान करना, गाय बछड़े का मतलब निस्वार्थ, गाय के लिए आज तक कोनो बछड़ा ने बाल्टी भर के पानी नहीं धरो, कितना प्यास लगी सब पी लो, कह सकते हमारी माँ आओ, ऐसा कहा कभी? इसलिए उदाहरण दिया गौ बच्चे का, कोई स्वार्थ नहीं है उसका, गाय का फर्ज है कि उसको जब तक दूध पीता है तो दूध पिलाती है, उसके बाद खत्म, अब तुम खेलो कूदो और घास खाते घास खाओ, जो करना तुम्हें फिर अपने करो। उसको आखिरी में जीवन में कोई बेटे के लिए तो आकांक्षा हो सकती कि मेरा बेटा है आखिरी में दवाई वाई कर देगा, सेवा कर देगा, इसलिए माँ और बेटे का उदाहरण नहीं दिया, गाय बछड़े का उदाहरण, क्योंकि निस्वार्थ है, यहाँ तो स्वार्थ आ सकता है, इसलिए निस्वार्थ प्रेम रखना साधर्मी के प्रति गौ वच्च प्रीति सम, ये बहुत दुर्लभ हो गया, कम हो गया है तो, लेकिन इसमें 4 प्रकार का अनुराग होता है, जिसमें एक धर्मानुराग है, ये सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, ये मेरे धर्म का है, उसके प्रति एक जो सहज अनुराग जी, अब नहीं मालूम पड़ता जी, अगर बाहर जाओ और अब मध्य प्रदेश को आदमी मिल जाए उत्तर प्रदेश में, अच्छा आप हमें आप भी मध्य प्रदेश के, और अगर विदेश में इंडियन मिल जाए कोई तो चाहे कौन धर्म को हो, अच्छा आप भी भारतीय हैं, कैसा लगता है उस समय, वही वो भाव यहाँ पर लाना कि साधर्मी दिख जाए तो वैसे ही लगे कि अरे बहुत रेयर है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाला ये भी है, मैं भी हूँ, उसके प्रति आनंद आना चाहिए। तो ये धर्मानुराग मित्रानुराग, जो हमारा मित्र है उसका कल्याण कैसे हो, इस प्रकार की हमेशा जो चिंता करता है उसको बोलते मित्रानुराग। और एक होता भावानुराग, जिसमें कि हम निरंतर भावना भाते रहते कि सभी जीव कल्याण करें, भावानुराग। और एक होता मध्यानुराग, ब्लड रिलेशन जिसको कहते, जैसे कि पांडव आदि वत, जैसे पांडवों का पांचों भाइयों में था, दो के ऊपर विपत्ति आई, तीन के ऊपर, तो दो सोच रहे हैं अपना कल्याण रोक लिया उन्होंने इस चिंता की वजह से कि इन तीनों जी तीनों भाई तो वृद्ध हो गए, हम तो यंग हैं, हम तो ये सीढ़ी की तपन सह लेंगे, लेकिन ये लोग सह पाएंगे कि नहीं, क्या करूं, इतना अनुराग आ गया था। इस मज्जानुराग कहलाता, मज्जा एक्चुअली जो हड्डी के भीतर होती ना उसको बोलते मज्जा, लिक्विड जो जो उसको प्लाज्मा, हाँ बून मैरो, हाँ ये डॉक्टर बून मैरो, तो जैसे वो उसको अलग नहीं कर सकते, हड्डी से अलग नहीं कर सकते उसको, है ना। तो ऐसा अनुराग, उसका अनुराग का विशेषण दिया है कि जैसे हड्डी और मज्जा अलग अलग नहीं होती हैं, उसी तरह इतना अनुराग होता अंत तक जीवन के, ऐसा मज्जा। ये चारों धर्म की प्रभावना के लिए है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। साधर्मीसो गोवच्छ प्रीति सम, कर निज धर्म दीपावे, ऐसा करके अपने धर्म को दीपावे अर्थात प्रकाशित करता है, उसको बढ़ाता है। इन गुणते विपरीत दोष वसु, और इन गुण से अगर विपरीत चलते हैं तो यही दोष हो जाते हैं, इनको सतत खिपावे अर्थात उन दोषों को हमेशा अलग करता रहता। और ये तो अपन बस रहने दें, है ना, करें है? थक गए आप, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा थक गए क्योंकि बहुत अपन इसमें बहुत कंसंट्रेशन लग गया इसमें, इसमें जो है मैं ऐसा नहीं सोच रहा था आसानी से हो जाएगा।
नहीं चार लोगों को बैठा दिया ना
आपने, और तीन चार लोग भी ऐसे बैठे थे कि मुश्किल। अच्छी बात है, फिर इसको अब आसान है, वैसे आठ मदों को दिया है, ये तेरह गया जो अपन ने सामान्य रूप से एक बार चल कर क्या कर, पर कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं अभी आने वाली, सम्यक दर्शन की महिमा और ठीक आकुलता शिव माही ने ताते।